आज की बात। श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। हमारी चर्चा का विषय है भारत में होने वाले राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव। भारत में गत 11 जून को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्यसभा की 57 रिक्त सीटों में से 30 के लिए सांसद निर्विरोध रूप से चुने जा चुके थे, जबकि शेष 27 सीटों के लिए 11 जून को मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 11, राजस्थान में 4, झारखंड में 2, मध्य प्रदेश में 3, कर्नाटक में 4, हरियाणा में 2 और उत्तराखंड में 1 सीट के लिए मतदान हुआ और परिणाम भी सामने आ गए। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। विधायक अपना वोट प्राथमिकता के हिसाब से देते हैं, अर्थात यदि 12 उम्मीदवार मैदान में हैं तो हर विधायक को बताना होगा कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और इसी तरह सभी 12 उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी। इस बार राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले चुनावों में विधायकों को पैसे देकर मतदान कराने का मामला सामने आया। भारत के एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि किस तरह विधायक वोट देने की कीमत करोड़ों में वसूलते हैं। स्टिंग ऑपरेशन कर्नाटक में किया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि कांग्रेस और JDS राज्यसभा में अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक कैमरे के सामने ये स्वीकार करते दिखाई दिए कि उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के लिए विधानसभा क्षेत्र के विकास के मद में करोड़ों देने का आश्वासन दिया गया है। निर्दलीय विधायक वर्थुर प्रकाश ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के अलावा JDS के 6-7 विधायक भी कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मैं खुद कांग्रेस के साथ हूँ, CM विकास के लिए फंड दे रहे हैं, हम सभी CM के साथ हैं।
अपना एक कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, जो कुछ भी देना होगा जिसका नाम अनाउंस करेंगे वही खर्च करना है ना, पर कुछ देना है।
कांग्रेस विधायक एन हैरिस को ये कहते हुए देखा गया कि राज्यसभा सीट के लिए 12-13 वोटों की जरूरत है, हम मैनेज कर रहे हैं, निर्दलीय हमें वोट कर रहे हैं, JDS के 5 सदस्य समर्थन कर रहे हैं, फंड देना CM का दायित्व है। वहीं जनता दल सेकुलर के मुजाहिद ने कहा कि पैसे देने में पीछे नहीं हटेंगे। स्टिंग ऑपरेशन में ये भी सामने आया कि कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को टूर पर ले जाया जाएगा। निर्दलीय विधायक वर्थुर प्रकाश ने कहा कि टूर पर गए विधायकों का फोन भी उनसे ले लिया जाएगा ताकि JDS के लोग संपर्क न कर सकें। JDS के BM फारूक ने कहा कि पैसे के मामले आम हैं, मुझसे भी भविष्य में पार्टी का समर्थन करने को कहा गया है। निर्दलीय विधायक अशोक खैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों को विकास के लिए अतिरिक्त फंड देने का आश्वासन दिया है, सभी निर्दलीय कांग्रेस का समर्थन करने वाले हैं।
Look at the condition of my constituency and nobody did any work, everything is to be wrong. नहीं दिया कुछ, because opposition है ना, बहुत कम फंड देते हैं। मेरे constituency में बाजी वाले को 45 करोड़ पर ईयर दे रहा है, मेरे रहता कुछ 6 करोड़ पर ईयर, क्या करूँ 6 करोड़ लेके।
टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव रद्द या स्थगित करने की सिफारिश करे, लेकिन मतदान निर्धारित तारीख अर्थात 11 जून को हुआ। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि राज्य में भाजपा चुनाव परिणामों पर असर डालने के लिए धन बल का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा और इसके नेता सभी तरह की तरकीब अपना रहे हैं, वो धनबल और दबाव डालने के हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव से ठीक एक रात पहले ही उनके 2 विधायक निर्मला देवी और देवेंद्र सिंह के खिलाफ पुराने मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो कुछ और नहीं बल्कि शक्ति का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। चुनाव की पारदर्शिता पर उठते सवाल और पैसे देकर वोट खरीदे जाने के इन मामलों के बीच बार बार ये मांग उठी कि चुनाव आयोग कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता। हालांकि इससे पहले इस प्रकार के मामलों के प्रकाश में आने के बाद चुनाव आयोग कठोर कदम उठा चुका है। हाल ही में तमिलनाडु की अरवाकुरुचि और तंजावुर में वोटरों को पैसे देने का मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों सीटों के चुनाव रद्द कर दिए गए थे। चुनाव आयोग ने मार्च 2012 में अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए झारखंड में राज्यसभा चुनाव रद्द करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है जिसके फाउंडिंग एडिटर जगदीश छोकर चुनावी प्रणाली की कमियों और खामियों को कुछ इस प्रकार गिनवाते हैं, साथ ही राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों की कमियों को भी रेखांकित करते हैं।
देखिए, राज्यसभा के चुनाव में खासियत यह है कि इसमें जनता वोट नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। जब वो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? राजनीतिक दल ही मेरे हिसाब से जो लोकतंत्र की जड़ को उखाड़ा जा रहा है इस देश में, वो राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को मेरे ख्याल से लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर उनको लोकतंत्र में विश्वास होता तो अपने आंतरिक काम वो लोकतांत्रिक तरीके से करते। कोई भी राजनीतिक दल अपने अंदर के काम काज में लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कि वो बाहर लोकतंत्र करेंगे और अंदर एक तंत्र करेंगे, ये तो उसके नेताओं को और प्रतिनिधियों को कोई नैतिक संकट नहीं है। वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है, जनता उनके पास जाती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इसलिए कि वो जनता के कृतज्ञ नहीं है कि जनता ने उन्हें चुना है, वो उसके कृतज्ञ हैं जिन्होंने उसको टिकट दिया है। जनता को उनसे मिलने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। क्यों भीड़ लगी रहती है एमपी एमएलए के घर के बाहर? एक देश में माहौल बन गया है कि राजनीतिक दल जो हैं वो जो मर्जी कर सकते हैं। इसी दल को लेकर, इसी वहम को लेकर या डर को लेकर कभी कभी हमारी न्यायपालिका भी घबरा जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुलेआम फंक्शन में रोते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये दो तीन पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल है। ये जो लोग हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन और मजबूती से निभा सकते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए जनता को और कोर्ट्स को और मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा।
पैसे के इस लेन देन के बीच ये मामला भी उठा कि राज्यसभा की सीटों के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आते हैं वो बहुत अधिक धनी होते हैं और संभावित रूप से धन बल का प्रयोग करके ही सीट प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार राज्यसभा चुनावों की शैली से आहत दिखाई दिए। उनका कहना था कि जिस सदन को राजनीति में उच्च आदर्शों वाला माना गया और उसके गठन की मंशा यही थी कि ये चुनकर आए लोगों के सदन से अलग जन दबाव से ऊपर उठकर नीतियों पर विचार करेगा, उस सदन का चुनाव आम चुनावों की तरह ही अनैतिक और लूटपाट के किस्सों से भरा हुआ है। आज से नहीं बल्कि जमाने से राज्यसभा के चुनाव में यही होता रहा है, चूंकि पहले से होता रहा है और सब यही करते हैं, इस दलील ने हर दौर में हर गलत को जायज ठहराया है। अनैतिकता ही राजनीति की नैतिकता है। जो लोग नैतिकता के प्लेटफॉर्म से राजनीति को देखते हैं वो हर दौर में और हर पार्टी में ठगे जाने के लिए अभिशप्त हैं। राज्यसभा का चुनाव फिर से याद दिला गया कि वैचारिक और संवैधानिक नैतिकता कुछ नहीं होती, लेकिन ये तय है कि वर्तमान स्थिति किसी के लिए भी उचित नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियां जारी रहीं तो संवैधानिक संस्थाओं की साख का प्रभावित होना तय है, और ये जब देश के नुकसान में है तो फिर राजनीतिक दलों के हित में कैसे हो सकता है? राजनीतिक दलों को हो सकता है कि इन हथकंडों से कुछ समय के लिए फायदा मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन दलों का भविष्य भी तो इन संवैधानिक संस्थानों के भविष्य पर निर्भर है। अतः ये राजनीतिक दल यदि अपने अंदर सुधार नहीं लाते तो वे एक प्रकार से उसी डाल को काटते रहेंगे जिस पर बैठे हैं।